वचन। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, इससे पहले कि हम आज का ये बाइबल अध्ययन आरंभ करें, सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। और आज प्रतिदिन की तरह फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों पहले इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा वंशावलियों के बारे में और इसके पश्चात हमने यह भी देखा कि मनुष्य की सृष्टि किस प्रकार से हुई थी। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दाऊद के विषय में, और इसका विषय इस प्रकार से है कि दाऊद का राज्य। शाऊल को घात करने वाला कौन था? यहोवा। अब हम इतिहास के तीसरे मुख्य भाग में आते हैं। प्रथम 9 अध्याय में असाधारण वंशावलियां थी और दूसरा मुख्य भाग मात्र 1 अध्याय है जो राजा शाऊल का राज्य है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से शाऊल ने धूम मचाने वाला कोई भी काम नहीं किया था जैसा कि उसकी जनता सोचती थी। वह परमेश्वर को प्रभावित करने में सफल नहीं रहा। परमेश्वर उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु के कारण लिखता है, परंतु उसकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करता है। अब हम दाऊद के राज्यकाल के भाग में आते हैं। सबसे पहले दाऊद के योद्धाओं की सूची है जिसे हम अध्याय 11 और 12 तदोपरांत दाऊद और वाचा के संदूक का वर्णन है अध्याय 13 से 16 अध्याय में। तब दाऊद और मंदिर का वर्णन किया गया है जिसे हम अध्याय 17, फिर दाऊद का युद्ध में जाना अध्याय 18 से 20 में, तब जनगणना करके दाऊद पाप करता है अध्याय 21, अंत में दाऊद द्वारा मंदिर निर्माण की तैयारियां अध्याय 22 से 29 में। मेरे मित्रों, इस पुस्तक का शेष भाग दाऊद और दाऊद के राज्य से संबंधित है। आरंभिक अध्यायों में दी गई वंशावलियां दाऊद तक पहुंचती है, वरन दाऊद के परिवार में आगे तक चलती चली जाती है। अगली पुस्तक जो दूसरे इतिहास की पुस्तक है, उसमें दाऊद और उसके वंशजों की कहानी सुनाती है और उत्तरी राज्य का तो वह पुस्तक उल्लेख ही नहीं करती, जब से उन्होंने दाऊद के परिवार के राज्य से विद्रोह किया है। मेरे मित्रों, हमारे लिए यह भी देखना उचित होगा कि परमेश्वर कैसे दाऊद के जीवन की कुछ घटनाओं पर विशेष बल देता है और अन्य को अनदेखा करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अध्याय 21 को दाऊद का पाप शीर्षक दिया है। दाऊद के पाप से आप तुरंत बतशेबा के साथ उसके पाप पर ना जाएं, जैसा कि प्रायः मनुष्य के मन में विचार आता है। जी हाँ, जब दाऊद का नाम लिया जाता है तो यही विचार आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर दाऊद द्वारा की गई जनगणना को उसके लेखे में पाप ठहराता है। परमेश्वर की दृष्टि में यह उसका सबसे बड़ा पाप था। मेरे विचार में यहाँ हमारे लिए एक बड़ा सबक है। अनेक विश्वासी कुछ बातों को तो पाप समझते हैं और कुछ बातों को पाप समझते ही नहीं है। मैं तो यह मानता हूँ कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे मन में कुछ गलत धारणाएं थी जिसे उन्होंने पाप समझा था। वह पाप है ही नहीं, और जिसे उन्होंने साधारण और महत्वहीन बात समझी, उसी को परमेश्वर ने पाप माना या ठहराया। मेरे मित्रों, दाऊद के जीवन में मनुष्य बतशेबा के साथ उसके पाप पर उंगली उठाता है। वह एक भयानक पाप था और परमेश्वर ने उसे इसका दंड भी दिया, परंतु उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। दाऊद द्वारा जनगणना यद्यपि हमारे लिए एक सामान्य बात है, परंतु हम देखेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में वह सामान्य बात नहीं थी। इसका कारण हम देखेंगे। इस बात से पाप के प्रति हमारा दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न हो जाना चाहिए। मेरे मित्रों, हमें पाप को करने और न करने के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, इच्छा और विचार के परिप्रेक्ष्य में भी समझना आवश्यक है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना आवश्यक है कि पाप के विषय में परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझ पाए। तो आइए आज हम अपने इतिहास की पुस्तक, पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, तब सब इसराइली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस के हैं। मेरे प्रियो, इतिहास के इस युग के बारे में शमूएल की पुस्तक में लिखा है कि दाऊद ने यहूदा और बिन्यामीन के दक्षिणी क्षेत्र में 7 वर्ष राज्य किया था और उस समय उसकी राजधानी हेब्रोन थी, परंतु इतिहास की पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसराइल को एक संगठित राज्य अर्थात संपूर्ण 12 गोत्र के रूप में देखता है। अतः परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद वास्तव में राजा तब था जब वह संपूर्ण इसराइल पर राज्य कर रहा था और 12 गोत्रों द्वारा स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 2 पद में, जहां पर लिखा है, अगले दिनों में जब शाऊल राजा था तब भी इसराइलियों का अगुआ तू ही था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान तू ही होगा। मेरे मित्रों, वे इसमें परमेश्वर का हाथ देख रहे थे। दाऊद तब तक राजा नहीं कहलाया जब तक प्रजा ने उसे परमेश्वर का चुना हुआ स्वीकार नहीं किया था। यहाँ तक कि यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों पर 7 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात भी। मित्रों, आइए हम आगे देखेंगे पहला इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए सब इसराइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। मेरे मित्रों, अब वह 12 गोत्रों पर राजा बनाया गया। परमेश्वर की दृष्टि में अब दाऊद का राज्यकाल आरंभ होता है। हम पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, तब सब इसराइलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया जो यबूस भी कहलाता था और वहां यबूसी नाम उस देश के निवासी रहते थे। दाऊद ने वह संपूर्ण प्रदेश छान लिया था और संभवतः यहोशू द्वारा भेजे गए भेदियों से भी अधिक अच्छी तरह से उसने छानबीन की थी। वह उस क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखता था और उसने यरूशलेम को राजधानी के लिए उपयुक्त समझा। इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाना था। मेरे मित्रों, यह दाऊद ही का चुनाव नहीं, परमेश्वर ही का चुनाव था, अर्थात यूं कहें कि परमेश्वर का भी चुनाव था। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में यरूशलेम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। निश्चय ही वह यरूशलेम आज का यरूशलेम नहीं है। आप शायद यरूशलेम गए हैं या उस नगर के चित्र को देखे हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई से प्रकट होता है कि दीवारें आज की स्थिति से विपरीत थी। दाऊद की नगरी नीचे थी और मंदिर ऊपर था। आगे चलकर दीवारें ऊंची की गई और इस प्रकार मंदिर का क्षेत्र नगर से नीचे हो गया। मंदिर मोरियाह पर्वत पर बना, जो आज के यरूशलेम के मध्य एक संकरी पर्वतमाला है, और शहरपनाह के बाहर इस पर्वतमाला पर गुलगुथा है, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। दाऊद ने यह स्थान चुना था। आइए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 पद में, जहां पर लिखा है, तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहां आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। मेरे मित्रों, हम यहां पर देखते हैं कि दाऊद ने सियोन का गढ़ जीत लिया था और वहीं अपना महल बनवाया था। सियोन पर्वत दाऊद के लिए बहुत मूल्यवान था। पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। मेरे मित्रों, योआब दाऊद की सेना में प्रमुख था। वह दाऊद का परामर्शदाता भी था और उसका प्रथम सेनानायक भी था। वह दाऊद के योद्धाओं में से एक था। आपको स्मरण होगा कि जब वह पहली बार दाऊद के पास आया था, तब हमें उसके वीरता के कामों का वर्णन सुनाया गया है। उसके द्वारा सेना का नेतृत्व और दाऊद के लिए युद्ध करना आदि। वह दाऊद की सेना का सेनापति था। वह संपूर्ण सैन्य बल का सर्वे सर्वा था। तब हम पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। मित्रों, ध्यान दीजिए, दाऊदपुर वास्तव में सियोन पर्वत था। यही दाऊद का महल बनाया गया था। सियोन पर्वत दाऊद का मन भावन स्थान था, जिसे दाऊदपुर भी कहा गया। पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा है, और उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहर पनाह बनवाई, और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि योआब दाऊद का सेनापति ही नहीं, उसके शहरी विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षक भी था। हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय के 9 पद में, और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद ने इसराइल को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां इसराइल एक महान राष्ट्र वरन वैश्विक शक्ति बन गया था। दाऊद ने नींव डाली और उस नींव पर सुलेमान उस युग में संसार के समक्ष गवाही दे पाया। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं दाऊद के योद्धा अर्थात शूरवीर। दाऊद के ये योद्धा वे मनुष्य थे जो दाऊद के निर्वासन के समय उसके पास आए थे। अब क्योंकि दाऊद राजा बन गया था, इसलिए उन्हें भी प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त हुए थे। अब यहाँ एक और प्रमेय है जिसे हमें अनदेखा नहीं करना है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त एक जाति का आह्वान कर रहा है, वे उसके योद्धा हैं। आज का समय मसीह के परित्याग का समय है। उसके अपनों ही ने कहा, हम उसे अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे। उसने राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर अपना सिंहासन स्थापित नहीं किया। दाऊद भी एक साधारण मनुष्य था, जबकि इसराइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर दिया गया था। शाऊल अब भी राज्य कर रहा था। परमेश्वर उसे अवसर पर अवसर दे रहा था कि वह सुधर जाए, परंतु वह सुधरा नहीं। उस समय दाऊद अपनी जान बचाकर भाग रहा था और यह उसके परित्याग का समय था। उसी समय सब स्थानों से मनुष्य उसके पास आए और उसका नेतृत्व स्वीकार किया। वे दाऊद के योद्धा हुए। आज मसीह को संसार ने त्याग दिया है, अर्थात त्यागा हुआ है। मुझे इसकी व्याख्या नहीं करना है। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। आप और मैं जिस संसार में रहते हैं वह मसीह का त्याग करता है, परंतु वह अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को बुला रहा है। वह हमारा उद्धार करता, प्रभु और स्वामी है। अतः हमें उसके सिंहासन पर बैठने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब हमें बताया गया है कि हम उसके साथ राज्य करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु संसार द्वारा अस्वीकार्य है। मित्रों, मैं समझ नहीं पाता कि कुछ विश्वासी नगर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। वे असफल रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि यह संसार उससे घृणा करता है, इसलिए यह हमसे भी घृणा करेगा। मेरे मित्रों, यदि आप संसार में विख्यात हैं तो आपको अपना आत्मनिरीक्षण करना है। स्वर्गीय डॉक्टर बॉब सूलर कहा करते थे, मैं मनुष्य को उसके मित्रों से नहीं उसके शत्रुओं से आंकता हूं। यदि आपके पास उचित शत्रु हैं तो आप सही हैं। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासी हैं तो शैतान के अनुयायी आपके वैरी होंगे। हम मसीह के परित्याग के युग में वास करते हैं। वह अपने योद्धाओं का आह्वान करता है। मेरे प्रियो, तीन महान शूरवीर वे थे जो बैतलहम के कुंड से दाऊद के लिए पानी लाए थे। आइए हम आगे पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 15 से 19 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नाम गुफा में गए और पलिस्तियों की छावनी रपाइम नाम तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिस्तियों की एक चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तब वे तीनों जन पलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लोहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं, इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन तीन वीरों ने ये ही काम किए। मेरे प्रियो, दाऊद का पालन पोषण बैतलहम में हुआ था। वह उसका अधिवास था। वहां प्रवेश करते ही एक कुआं था। वह अनेक बार भेड़ों को चराते समय प्यासा होकर वहां पानी पीने आता था, परंतु अब वह वहां नहीं जा सकता था क्योंकि पलिस्ती उसे घेरे हुए थे। उसने आज्ञा नहीं दी, परंतु अपनी इच्छा प्रकट की कि वह उस कुएं से पानी पीना चाहता था। इन तीन पुरुषों ने पलिस्तियों के मध्य जाकर वहां से पानी लिया और दाऊद के पास लाए। अब ध्यान देने योग्य बात है और रोचक बात तो यह है कि दाऊद ने पानी पिया ही नहीं, वरन उसे परमेश्वर को अर्घ करके चढ़ा दिया। इससे हम कुछ अनुरूपताएं खोज सकते हैं। यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था और वह बैतलहम के कुएं का वह पानी है, वह जीवन का जल है। मसीह यीशु के अनेक योद्धा हैं जिन्होंने सदियों से जीवन का जल प्यासे संसार को दिया है। मेरे मित्रों, मुझे लिविंगस्टन, जटसन, हेनरी मार्टिन और अनेक पूर्वकालीन मिशनरियों का स्मरण आता है। आज भी अनेक परमेश्वर के दास हैं। कुछ लोगों से मैंने भी भेंट की है जो हमारे इस देश में पाए जाते हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि सेवकों ने प्यासे संसार में परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए अवरोधों को पार किया है। परमेश्वर उनको ध्यान में रखता है, उन्हें योद्धाओं की सूची में रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दाऊद के योद्धाओं ने उसकी इच्छा पर कैसी तत्कालिक प्रतिक्रिया दिखाई। वह उन्हें ऐसी आज्ञा कभी नहीं देता, परंतु हमारे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हम जीवन जल संपूर्ण संसार में ले जाएं। हमने अब तक क्या किया है? क्या आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अब देखिए ऐसी जोखिम उठाकर लाए गए पानी के साथ दाऊद ने क्या किया। दाऊद स्वार्थी नहीं था, निसंदेह उसके साथी निष्ठावान थे, वे उससे प्रेम करते थे, वे उसके लिए कष्ट उठाने को तैयार थे, क्योंकि दाऊद भी उनके लिए कष्ट उठाने को तैयार रहता था। वह उस पानी को पीना नहीं चाहता था क्योंकि उसके साथी प्यासे थे, उसने उनके साथ एक होने का चुनाव किया। हम भजन संहिता 22 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि मसीह यीशु ने क्रूस पर मरते समय कहा था, मैं जल के समान बह गया। जी हाँ, उसने अपना जीवन पृथ्वी पर पानी के समान बहा दिया था। उसने अपना स्थान यहाँ हमारे सदृश रखा। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, उसने हमारा नरक भोगा कि हमें स्वर्ग मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा लिया ताकि हम उस नरक को न भोगें परंतु स्वर्ग के आनंद को ले लें। मेरे मित्रों, यदि हम उससे प्रतिफल पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बलिदान चढ़ाना है। इस अध्याय में एक और घटना है जिसे मैंने सदा ही सराहा है। आइए हम पहले इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ें। लिखा है, यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कब्जेले के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान दो मुआबियों को मार डाला और हिम ऋतु में उसने एक गढ़े में उतर के एक सिंह को मार डाला। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, उसने एक शेर को मारा था और वह भी बर्फ गिरते समय। हमारे प्रभु ने इस पर विशेष ध्यान दिया। मेरे विचार में प्रभु एक विश्वास योग्य मनुष्यों पर ध्यान देता है जो वर्षा या धूप काल में भी आराधना में आते हैं। मित्रों, अध्याय 12 में एक ही घटना है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गाद के गोत्र से कुछ लोग उसके निर्वासन समय में उसके पास आए थे, उनके विषय लिखा गया है, जिसे हम पहले इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय उसके 14 से 18 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये गादी मुख्य योद्धा थे, उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। ये ही वे हैं जो पहले महीने में जब यर्दन नदी सब कड़ाड़ों के ऊपर बहती थी तब उसके पार उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया और कई एक बिन्यामिनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ है। अब आत्मा अमस्य में समाया, जो 300 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हे ईशा के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिये ठहरा लिए। मेरे प्रियो, ये लोग बाढ़ में चढ़ी हुई यर्दन नदी पार करके दाऊद के पास आए थे। वे हिम्मत हारने ही वाले थे कि दाऊद उनके पास गया। वह नहीं जानता था कि वे मित्र हैं या बैरी। उसने तो उनसे यह भी कह दिया था, तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो मैं तुम्हारा नाश करूंगा। उन्होंने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हम तेरी ओर के हैं। वे उसकी सेवा में रहना चाहते थे। मेरे मित्रों, बहुत से विश्वासी प्रभु की सेवा में रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि सेवा करना केवल व्यस्त रहना है। तथापि प्रश्न यह है, क्या आप मसीह के लिए जीना चाहते हैं? गाद के वंशज दाऊद से यही कह रहे थे, दाऊद, हम तेरे अधीन होकर तेरे लिए जीना चाहते हैं। मेरे मित्रों, हम इस आत्मिक प्रसंग को एक चरण आगे ले चलते हैं। मसीह ने अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा आपको यर्दन पार कराई है और सब आत्मिक आशीषें दी है। अब आपको संसार में मसीही जीवन जीना है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहे गए बातों को सुनते हैं। लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए। मेरे मित्रों, हमें अपना मसीही जीवन यही जीना है। एकमात्र स्थान जहां आपको मसीही जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है वह है यहां इस पृथ्वी पर। इसके लिए आपको मसीह के अधीन होना है। यह विचार कि मसीही जीवन संसार से समझौता और आडंबर है सर्वथा गलत है। आपको जल पार करना है, आपको नदी पार करना है, इसमें आपको कीमत भी चुकाना है। आपको दाऊद से महान किसी मनुष्य के पास जाना है और वह प्रभु यीशु के पास जाना है और उसके अधीन अपने आप को समर्पण करना है। मेरे मित्रों, यह उसकी सेवा में रहना कैसा ही आनंद का विषय होगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार अपने उस चुनाव को ले रहे हैं। क्या आप उस नदी को पार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस मसीह की निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीही जीवन जीने के लिए अभी तत्पर हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए एक सुंदर अवसर है कि हम अपना चुनाव कर लें। जिस प्रकार दाऊद के लोगों ने अपने स्वामी के लिए पानी लाने के लिए भी अपने जीवन को खतरे में डाला, आज मुझे और आपको अपने मसीह के लिए उसके पास आने के लिए कष्ट उठाने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि अपने जीवन को आप खतरे में डालें, मैं यह कहता हूं कि आप मसीह के पास आएं, अपने जीवन उसे दे दें। मेरे प्रिय श्रोता मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है और आज आप भी अपने जीवन के लिए एक बहुमूल्य निर्णय लेंगे कि आप मसीह के लिए जीना सीखेंगे, अर्थात उसकी अधीनता में आप रहेंगे। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन तुम पर अर्पण कर दे हे जगदाताई, हे जगदाताई, हे जगदाताई।